أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين خداوند عالم اول قرآن سے لے کر آخر قرآن تک مسلسل اس بات پر اصرار پر اصرار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہ انسان تجھے مدد درکار ہے اور اگر مدد چاہیے تو میری ذات مدد کے لیے حاضر ہے. یہ جو تو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے کہ بارلہا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد کو طلب کرتے ہیں, تیری بندگی اور تجھ ہی سے مدد. یہ تجھ ہی سے مدد کیا ہے, کس طرح سے ہم تجھ سے مدد کو طلب کریں؟ خداوند عالم نے اس کس طرح کے جواب سے بھی ہمیں اور آپ کو محروم نہیں رکھا. جہاں ہمیں اور آپ کو یہ تربیت دی کہ تمہیں دن میں پانچ وقت اور اس کے علاوہ جب تم نماز میں حاضر ہو تم اس سے مدد طلب کرو, اور اگر تمہارے ذہن میں سوال آئے کہ کس طرح سے مدد طلب کریں تو اس کا جواب واستعین بالصبر والصلاۃ کے ذریعے سے ہے. ہم نے ابھی نماز پڑھی, روزانہ نماز پڑھتے ہیں, آئندہ بھی نماز پڑھیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. لیکن مدد کا ذریعہ کیا ہے؟ مدد کا ذریعہ خداوند عالم نے بیان کیا جو روزانہ آپ کی خدمت میں آیت پیش کی جا رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے صاحبان ایمان, مدد چاہتے ہو تو پھر مدد ایک وسیلہ صبر ہے اور دوسرا وسیلہ نماز ہے خود. انسان مدد کیوں مانگتا ہے, کیوں نصرت کا طالب ہوتا ہے, اس کیوں کا جواب ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. ہم اور آپ روزمرہ صبح سے شام تک جو چھوٹے بڑے کام انجام دیتے ہیں, کسی نہ کسی طرح ہمیں اور آپ کو اپنے کاموں میں مدد درکار ہوا کرتی ہے. खास तौर पर वो काम कि जो हमसे अंजाम बेतनहाई न पा सकें, अकेले हम और आप अंजाम न दे सकें। हमारी और आपकी सोच वहां ना पहुंचे तो हम और आप दूसरों से मदद तलब करते हैं, या फिक्री तौर पर या फिजिकली तौर पर जिस्मानी, दूसरे आकर हमें और आपको मदद फराहम करते हैं। खुदा ये कहता है कि मैं तुम्हें तालीम देता हूं, अगर मदद मांगना है तो ऐसे से मांगो कि जो तुम्हारी मदद करने में मुआविन साबित हो, भरपूर अंदाज में तुम्हें मदद दे सके। अब जब हमने जो है खुदा की तालीम शुदा चीजों को अपनाना शुरू किया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बारे लहा हम तुझ ही से मदद तलब करते हैं, अब वो वसीला भी बतला कि जिसके सहारे तू हमारी मदद करने को तैयार है। खुदा ने कहा जब मैंने तुम्हें तालीम किया कि मुझसे मांगो मदद को, अब मैं ही तुम्हें रास्ता बतलाऊंगा। इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र मुफस्सिरीन ने पहले भी अर्ज हुआ आपकी खिदमत में चंद दिनों पहले, रोजा, रोजा एक मिसदाक है सब्र का। कहा रोजा रखो, नुसरत में फराहम करूंगा। नमाज पढ़ो, नुसरत में फराहम करूंगा। हम और आप रोजा रखते हैं, नहीं मालूम आया वाकई रोजा रखने में हमारा और आपका हदफ और नियत नुसरत की तलब है या नहीं। दूसरे अल्फाज में बहुत माजरत के साथ, हम जब रोजा रखते हैं हमारा और आपका रोजा रस्म है या इबादत। अगर रस्म है तो फिर नुसरत नहीं, नुसरत का मुतालिबा नहीं। और ऐसे रोजे के बाद अगर असर जाहिर ना हो के नहीं होगा, गिला और शिकवा नहीं। असर और नतीजे का मुंतजर वो रहता है कि जो वाकयान मुतमन्नी हो नुसरत का। हम और आप किसी काम को अंजाम देना चाहें, अकेले अंजाम ना दे सकते हो, इरादा करें किसी की नुसरत का कि कोई आकर हमें नुसरत फराहम करे, मदद फराहम करे। उसके बाद हम और आप हक रखते हैं इंतजार का, किस चीज के, असर के, नतीजे के। अगर हमने और आपने नुसरत चाहने का इरादा किया ही नहीं है कि कोई आकर हमारी मदद करे, तो असर के भी मुंतजर रहना बेकार है कि हम और आप मुंतजर नहीं होंगे, और अगर मुंतजर होगा कोई तो झूठा है, खुद अपने आप से झूठ है। अपने आप से पूछे इंसान किस चीज का मुंतजर है, कहा नुसरत का, मगर तूने जो है इंतजार किया एक ऐसे काम के बाद के जिसके बाद इंतजार करने का हक है, कहा वो कौन सा काम है, कहा नुसरत का मुतालिबा। रोजा रखा रस्म, रोजा रखा आदत, भूखे रहने की आदत हो चुकी है। 11 महीने इंतजार करते हैं बाज अफराद भूखे रहने के लिए, औलियाए खुदा भी इंतजार करते हैं। रसमन नहीं, इबादतन। औलिया खुदा मुंतजर होते हैं शिद्दत के साथ माह मुबारक रमजान के, उनकी तड़प का अंदाजा लगाना हो तो मुलाहिजा करें खुतबा है नहजुल बलागा 193 खुतबा मुत्तकीन। हर दम उनकी ख्वाहिश ये होती है, मौला फरमाते हैं का एक लहजा भी इस दुनिया में बाकी रहना नहीं चाहते, एक लहजा भी, आने वाहिद भी, मगर मजबूर हैं जाहिरी जिंदगी करने पर हुक्म इलाही के तहत। राज क्या है? राज खुद मौला ने उसी खुतबे में बयान किया, कहा उनके जिस्म यहां है, रूह हालत परवाज में है, रूह मलकूत आलम में है। हमारे और आपके साथ महवे गुफ्तगु होते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घरदारी करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, मेहनत मुशक्कत करते हैं, कोई नहीं पहचान सकता उनको। लेकिन जब रात का आलम होता है उस वक्त देखा जाए इन अफराद को कि कोई नहीं देख सकता जुज रब्बे जुल जलाल के, जुज रब्बे जुल जलाल के। उनके इंतजार की कैफियत कैसी, प्यासे को अगर पानी ना मिले और शदीद प्यास का आलम हो, दम घुटा चला जाता है। औलिया खुदा माह रमजान का इस शिद्दत के साथ इंतजार करते हैं, क्यों? कहा लिका उल्ला है, अल्लाह से मुलाकात है। खुदावंद आलम साफ और शफाफ आईने को सामने रखता है, मुझे अपनी सूरत दिखाता है, मैं जब देखता हूं तो मुझे वो दिखाई देता है। यह माह रमजान इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, मदद तलब करो सब्र से यानी रोजे से। क्यों कहा गया रोजे को सब्र? हमने और आपने 11 महीने उजलत दिखाई, सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया का एक महीने सब्र बर्दाश्त तहम्मुल से काम ले, जो कुछ खो चुका है मिल जाएगा वापस, सब कुछ वापस आ जाएगा। लेकिन सब्र किस चीज की निस्बत? सब्र का इताअत के सामने सब्र, मेरे अहकाम के सामने सब्र, मेरे गुनाहों के मुकाबले पर सब्र, मेरी मुसीबतों के मुकाबले पर सब्र, इताअत आए उसका मकाम आए उसका जमान आए, सर तस्लीम खम करना है। गुनाह सामने आए अपने आप को रोक कर सर तस्लीम खम करना है, मुसीबत आए जबान पर शिकवा और शिकायत न लाकर सब्र करना है। 15 घंटे भूखा रहना खुदा को क्या फायदा का सब्र, शिकवा और शिकायत नहीं। इसलिए कि साबिर की निशानियों में से एक निशानी यह है अल्लाह यश्का मिन रब्बे का, अपने रब की शिकायत और शिकवा नहीं करता किसी से। खबारे ला ये भी कोई रोजा, तुझे क्या फायदा होगा? अर्जुआ मुख्तलिफ गुफ्तगू के दौरान, बंदा वो है कि जो चूँ चरा नहीं करता, चूँ चरा नहीं करता, वो बंदा क्या हुआ? नमाज उसकी कैफियत भी यही है, मदद तलब करो नमाज से। नमाज से कितनी मदद तलब की हमने, नमाज से अगर मांगा, मकान मांगा, औलाद मांगी, जायदाद, दुनिया व माफीहा, जो नमाज से मांगना दरकार है उसे हमने तलब किया? हमारी और आपकी देरीना आरजू नमाज के जरिए से क्या होती है? कोई कहे या ना कहे, खुद ब खुद आश्कार हो जाता है खुद इस जात के ऊपर के जो नमाज पढ़ रहा है। कहे अजीज तो नमाज क्यों पढ़ रहा है? खुद खुदा ने कहा इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, मदद नमाज से मदद तलब करो। तुझे क्या चाहिए? जान चाहिए, माल चाहिए? जान अजीज या माल ज्यादा अजीज? का अगर इंसाफ से पूछो जान ज्यादा अजीज है तो फिर माल क्यों? खुदा खुद कुरान मजीद में ये कहता है तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, यानी इम्तहान और आजमाइश है। इन्नमा अम्वालुकुम वाउलादुकुम फितना। याद रखो यकीन दर यकीन के साथ इन्नमा है, तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश। एक मर्तबा मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ एक शख्स के नजदीक से, कि वो शख्स मशगूल था दुआ मांगने में, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फितना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फितना, बारेलाहा मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूं फितने से, यानी फितने से बचना चाहता हूं। मौला के कानों में आवाज गई, मौला ने कहा उस्कुत, खामोश हो जा। कहा मौला क्या किया मैंने, दुआई तो मांग रहा हूं, कौन सा गलत काम अंजाम दे रहा हूं? कहा मुझे मालूम है तू दुआ मांग रहा है, अब मुझे तू बतला ये जो तू कह रहा है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फितना, इस फितने से क्या मुराद है? कि जिससे तू बचना चाहता है और खुदा की पनाह में आना चाहता है, क्या इससे मुराद तेरी वो आयत नहीं कि जिसमें खुदा ने माल और औलाद को फितना करार दिया है? कहा मौला वही मुराद है। तो अगर तेरी यही मुराद है तो दुआ इस तरह से मत मांग कि जिस तरह से तू इस वक्त मांग रहा है। तेरे दुआ का आलम क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फितना, ये दुआ गलत है। कहा मौला फिर किस तरह से मांगू, कौन सी दुआ सही है? अल्लाहुम्मा, कहा इस तरह से कह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुज़िल्लातिल फितन, बारेलाहा मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूं ऐसे फितनों से कि जो गुमराह करने वाले हैं, क्योंकि फितने से कोई भी महफूज नहीं रह सकता। खुदा बंदे आलम सबको फितनों में मुब्तला करता है, आजमाइश दर आजमाइश, मगर दुनिया दारे इस्तराहत तो नहीं, इदारे इम्तहान व आजमाइश है। बस खुदा बंदे आलम किसी को भी महफूज नहीं रखता फितनों से। हाँ, अब तुझ पर लाजिम है ऐ दुआ करने वाले, दुआ इस तरह से मत कर बल्कि उन फितनों से बचने की दुआ कर कि जिन फितनों में तेरे कदम लड़ खड़ा जाए। कबारे लहा, इस फितने से मुझे बता बचा कि जिसमें मैं लरज उठूं और बहक जाऊं। दूसरे अल्फाज में ये जो खुदा ने कहा है इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, मौला फरमा रहे हैं उस माल से पनाह मांग खुदा की कि जो तुझे गुमराह कर दे। बालिला ऐसा माल मुझे नहीं चाहिए। उस औलाद से पनाह मांग कि जो तुझे गुमराह कर दे। उसकी मोहब्बत में खुदा की खिलाफ वर्जी कर। औलाद की मोहब्बत में कितनी खुदा की खिलाफ वर्जी करते हैं हम और आप। औलाद ने अगर गलत किया है तो हम उसकी तरफदारी करते हैं उस हक के मुकाबले पर कि जो हमारा नहीं, जो हमारा नहीं। माल की निस्बत कि वो माल कि जो हमारा नहीं, कितनी तरफदारी करते हैं उस माल के मुकाबले पर कि जो हमारा है लेकिन कम है। मोमिन की निशानी, निशानियों में से एक निशानी यह है इन्न मिन हकीकत अलीमान अंतुसर अलहक्का व इन्जर्रका अललबातिल व इन्नफाका। ये भी मौलाए कायनात का फरमान है। काय अजीज अगर जानना चाहता है कि तू मोमिन है तो एक मेयार दिए देता हूं, एक कसौटी। खमौला वो कसौटी क्या है? का ईमान की हकीकतों में से एक हकीकत, बल्कि खुद ईमान हकीकत है, उसकी निशानियों में से एक निशानी यह है कि जो बरजस्ता है। का तेरे सामने अगर हक और बातिल आए, हक को तरजीह दे चाहे तुझे नुकसान क्यों ना उठाना पड़े उस बातिल पर कि जिसमें तुझे नफा मिलने वाला है। कितने ऐसे हैं हम में से कि जो इस किस्म के हक को अपनाते हैं और इस किस्म के बातिल को छोड़ देते हैं। बातिल तो है ही छोड़ने की चीज, हक तो है ही अपनाने की चीज, लेकिन क्योंकि हम बीमार हैं, बहुत तवज्जो के साथ, हक कड़वा लगता है। क्योंकि बीमार हैं बातिल मीठा लगता है। हम और आप जाहिरी बदनी लिहाज से, फिजिकली लिहाज से जब बीमार होते हैं और जब सेहतमंद होते हैं, अंदाजा कर ले आदमी। बीमारी में पानी भी कड़वा लगता है। क्यों, कभी सोचा है? ये कड़वा लगना खुद दलील है कि आप बीमार हैं, पानी मीठा है। आपकी बीमारी ने पानी को कड़वा दिखाया है, पानी मीठा है, दूसरे भी तो पी रहे हैं। आप बीमार हैं लिहाजा आपको पानी कड़वा लग रहा है, पानी कड़वा नहीं है। यही आलम हक और बातिल का है। जहां रिवायात के दरमियान यह आया है अल हक मुर्रुम, हक कड़वा है मगर हक भी कड़वा होता है, हक कड़वा नहीं होता है। वो हक हक ही नहीं होता कि जो कड़वा हो, हक तो शीरीन है। इसलिए कि खुद खुदा हक है। खुदा की जितनी भी नेमतें हैं सब की सब हक है। बस कड़वापन कहां, क्यों कड़वा लगता है? इसलिए कि जनाब आप बीमार हैं, मगर हक भी कड़वा भात कभी कड़वा नहीं होता। पानी कड़वा इसलिए लग रहा है कि आप बीमार हैं। हर कड़वा इसलिए लगता है कि आप बीमार हैं। अगर आप सही हो जाएं, सेहतमंद हो जाएं, वही पानी मीठा हो जाएगा, वही हक के जो अब तक कड़वा था मीठा है। मगर अहले हक को देखा नहीं, आसानी से हक को अपने साथ रखते हैं और उसी पर चलते हैं, यहां तक कि अगर जान देने का मकाम आए कर गुजरते हैं ये काम भी, और बड़े ही हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते। क्यों आखिर जान देते वक्त मुस्कुराहट शहीद के लबों पर, कि जो वाकई शहीद है, हक पर शहीद हुआ है। कभी मुलाहिजा किया है, शहीद क्यों शहीद होता है? एक मतलब है कि जिसे जानने की जरूरत है हमें और आपको अपने माशरे में, कि जिस जमाने से हमारा गुजर रहे हैं, शहीद को शहीद क्यों कहा जाता है? अजीजों याद रखें, बात आइए सुनते जाइए, शहीद या शाहिद से है या मशहूद से है। शहीद या शाहिद है या मशहूद, यानी क्या मतलब? शहीद या मुशाहिदा गर है, मुशाहिदा करता है, या कोई दूसरा उसका मुशाहिदा करता है, मशहूद है वो। अगर शहीद शाहिद से है तो किसका नजारा करता है ये, और बड़ी आसानी के साथ शहादत को पेश कर देता है, यानी अपनी जान का नजराना पेश करता है, का हक का नजारा करता है। हक का, हक से ज्यादा शीरीन कोई चीज नहीं, हक से ज्यादा मंजर किसी और शय का अच्छा नहीं। हक वो वाहिद मंजर है जो लतीफ है। हम और आप इस इलाके से निकलकर किसी जो है सरसब्ज शादाब इलाके में चले जाएं, कि जाते हैं हम और आप तफरी के लिए, ये तफरी क्या है? खुद लफ्ज तफरी के अंदर फराह है। लफ्ज तफरी को जो करार दिया गया है वो फराह से है, फराह यानी खुशी, शादाबियत। शादाबियत और खुशी मिल नहीं सकती जब तक इत्मीनान का एहसास ना हो। शहीद अगर शाहिद से है तो उसका मशहूद कोई और है, ऐसा मंजर है कि उसे देखकर खुशी से फूले नहीं समाता, आसानी के साथ जान को जो है दे देता है उस मशहूद के लिए जिसका नजारा कर रहा है। अगर शहीद शाहिद से नहीं मशहूद से है, यानी कोई दूसरा उसका नजारा गर है, ये मशहूद है और कोई दूसरा देखने वाला है उसे। हम और आप किसी महफिल में बैठे हुए हों, कोई बड़ी शख्सियत आए, जम्मे गफीर है, कसरत के साथ लोग बैठे हुए हैं, एक बड़ी शख्सियत वारिद हो, वो किसी पर निगाह ना करे बल्कि खास एक शख्स पर जो है निगाह करे, उसे सलाम करे। निगाह करने के बाद वो खुशी से फूले नहीं समाएगा, कहा मुझे फला शख्सियत ने एहतराम दिया, सलाम किया। जब हमारा और आपका ये आलम है इस दुनिया के अंदर, रब्बे जुल जलाल इस शहीद पर निगाह करता है जिसने सरे तस्लीम हम किया हक के सामने, जैसे ही रब्बे जुल जलाल उस पर निगाह करता है ये अपनी जान को फिदा करता है। तब जाकर उसे कहा जाता है शहीद। शहीद कोई मामूली इंसान नहीं है। बुनियाद मजबूत होती है, हक की बुनियाद है, इसलिए कि हक मीठा है, कड़वा नहीं। हम और आप मिठास को अजीज रखते हैं, मीठापन बहुत अच्छा लगता है हमें और आपको, पीने के लिहाज से भी, गुफ्तगू के लिहाज से भी। कोई अगर हमसे और आपसे अदब से गुफ्तगू करे तो हम उसके सामने बिछ जाएंगे, बिछ जाएंगे, झुक जाएंगे। और अगर कोई जलाल से बात करे गुस्से में, सवाल ही पैदा नहीं होता, एक लहजे के लिए रुक जाए उसके सामने। कोई अगर मुस्कुरा के हमसे बात करे, जान देने के लिए तैयार है। खुदा किस कदर मुस्कुराकर हमसे और आपसे बात करता है, कितना रहमो करम, कितना रहमो करम कि वो अपने आप को नहीं कहता रहीम के रहीम है, कहता है अरहमुर राहिमीन हो, अरहमुर राहिमीन हो। मैं अगर करीम हूं तो खाली करीम नहीं, हद से ज्यादा करामत करने वाली जात हूं। जब इतना करीम जात, इतनी करीम शख्सियत हमारे और आपके पहलू में है, हम और आप इतने दूर। बहुत सोच समझ के जुमला मैंने इस्तेमाल किया है, तवज्जो दरकार है। इतनी करीम जात हमारे पहलू में और हम इतने दूर। वो कहता है मैं तुमसे नजदीक हूं, तुम मुझसे दूर हो। कैसे हो सकता है ये? अगर आप मुझसे ये कहें या मैं आपसे कहूं कि हम आपसे नजदीक हैं, ला माला दूसरा जुमला कहने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है ये। अगर मैं आपसे कहूं मैं आपसे नजदीक हूं, ऑटोमेटिकली आप मुझसे नजदीक हैं, दूसरा जुमला कहने की जरूरत ही पेश नहीं आती। खुदा ये कहता है नहीं, मैं तुमसे नजदीक हूं, तुम मुझसे दूर हो। बारेला ये कैसे हो सकता है? जब तू हमसे नजदीक तो हम ऑटोमेटिकली तुझसे नजदीक है। जरूरत नहीं है तुझे कहने की कि तुम मुझसे नजदीक हो, या हमें कहने की हम नजदीक हैं तुझसे।